लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ।
हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक प्रबोधन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। हमने अपने पिछले प्रसारण में शोषण के विभिन्न रूपों का जिक्र किया जो न केवल युवाओं को पर पूरे मानव समाज की सुंदरता को नष्ट करती है। संत पापा फ्रांसिस अपने प्रेरितिक प्रबोधन में कहते हैं, मैं धर्म सभा के धर्माध्यक्षकों के संग मिलकर उन युवाओं के प्रति अपने प्रेम में कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ जिन्होंने उनके ऊपर हुई बुराई की अनुभूति को साहस पूर्वक व्यक्त करने का कदम उठाया है। उन्होंने कलिसिया को इस बात के लिए मदद की है कि वह इस बात से अवगत हो कि क्या हुआ है और उन पर निर्णायक रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो। हम विशेष रूप से असंख्य लोक धर्मियों, पुरोहितों, समर्पित भाई बहनों और धर्माधीक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं जिन्होंने रोज दिन अपने निष्ठा और समर्पित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए युवाओं की सेवा की है। उनकी सेवा और उनके प्रयास एक वृहद जंगल के समान है जो गुप्त रूप में विकसित होता जाता है। बहुत से युवागण जो धर्म सभा में उपस्थित थे उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए जिन्होंने जीवन में उनका साथ दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बहुत से वयस्क इस विषय पर उनकी सेवा कर सकते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि इस तरह के घृणित अपराधों को करने वाले पुरोहितों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। बहुत से पुरोहित हैं जो अपने प्रेरितिक कार्यों को निष्ठा और उदारता पूर्वक पूरा करते हैं। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि वे पुरोहितों की ऐसी बड़ी संख्या से अपने को प्रेरित होने दें और यदि आप एक पुरोहित को जोखिम में देखते हैं क्योंकि उसने अपने प्रेरितिक कार्य की खुशी को खो दी है या जो स्नेहपूर्ण मुआवजा की मांग करता है या जो गलत राह में चल रहा है तो आप उसे ईश्वर और लोगों के प्रति उसके समर्पण की याद दिलाएं, उसे सुसमाचार की याद दिलाएं और उसे सही मार्ग में आने हेतु मदद करें। इस भांति आप अपनी ओर से एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे जिससे उस तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो। यह काला बादल युवाओं को चुनौती प्रदान करता है जो यीशु ख्रिस्त और उसकी कलीसिया को प्रेम करते हैं। वे चंगाई के साधन हो सकते हैं यदि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कलीसिया में नवीनता लाने हेतु एक पहल करें तो वे कलीसिया में सदैव साक्ष्य की मांग करें और अपने सपनों को सजीव बनाए रखते हुए अपने नए विचारों को कलीसिया के सामने व्यक्त करें। संत पापा लिखते हैं कि केवल यह ही कलीसिया के सदस्यों के पाप नहीं है, इसका लंबा इतिहास अपने में पापों के छाये से अछूता नहीं है। हमारे पापों के स्वरूप सबों की आंखों के सामने है। वे सबों के सामने कलीसिया के पुराने चेहरे को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। माता कलीसिया विगत 2000 सालों से अपने तीर्थ में बनी है जहां वह जीवन की आशा और खुशी, दुख और तकलीफ को सारी मानवता के साथ साझा करती है। वह अपनी यात्रा को बिना लीपा पोती किए उसी क्रम में सुचारू रूप से जारी रखती है जैसे कि वह है। वह अपने सदस्यों के पापों को प्रकट करने में भय का अनुभव नहीं करती है जिसे कुछ लोग कई बार सुसमाचार के जलते प्रकाश के सामने छिपाने की कोशिश करते हैं, जो हमें शुद्ध और पवित्र करती है। वह अपने में इस प्रार्थना को करने में शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करती। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। इन सारी चीजों के बावजूद हम अपने में इस बात को याद करें कि हम अपनी माता का परित्याग ना करें जब वह अपने में घायल है, लेकिन हम उनकी बगल में खड़ा हूँ, जिससे वह अपनी शक्तियों को संग्रहित कर सके और पुनः एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। इस दुखदायी परिस्थिति में जो हमें सचमुच एक दर्द की अनुभूति लाती है, यीशु ख्रिस्त कलीसिया का परित्याग कभी नहीं करते हैं। वे उसे शक्ति प्रदान करते और एक नई राह में आगे बढ़ने का साधन प्रदान करते हैं। कलीसिया के जीवन की अंधेरी उपस्थिति कलीसिया में युग निर्माण हेतु सही अर्थ में एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। यह हमें पवित्र आत्मा में नएपन हेतु खुला होने और शुद्धता को धारण करने का एक नया अवसर देने के साथ ही कलीसिया के युवाओं को नवीकृत करने का एक अवसर हो सकती है। युवागण अपने में कलीसिया के लिए और भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यदि वे अपने में पूर्ण रूपेण पवित्र, धैर्यवान और विश्वासी ईश प्रजा होने का एहसास कर पाते हैं, जो कि पवित्र आत्मा से प्रेरित किया गया है। यह हमें ईश प्रजा को याजकीयवाद की महामारी से स्वतंत्र करेगा, जो बहुत से घृणित कार्यों की जन्मस्थली बनती है। इस अध्याय में संत पापा कहते हैं कि मैंने वर्तमान दुनिया में युवाओं की सच्ची परिस्थिति को देखने का प्रयास किया है। दूसरी अन्य बातों का जिक्र दूसरे अध्यायों में किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अपने इस विश्लेषण में संपूर्ण होने का दावा नहीं करता हूँ। मैं समुदायों को प्रोत्साहित करता हूँ युवाओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों को सम्मान पूर्वक और गंभीर रूप से खोज किया जाए, जिससे कि हम अति सुयोग्य रूप से उन्हें अपनी प्रेरितिक सेवा दे सकें। वहीं मैं इस अध्याय की समाप्ति के पूर्व आप सबों से कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा। संत पापा कहते हैं कि मैं आप सबों को इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे जीवन के दर्द भरे और अंधकारमय परिस्थितियों में जीवन की आशा बनती है। उदाहरण स्वरूप यह सत्य है कि डिजिटल दुनिया हमें अपने आप में डुबोए रखती, हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखते और अपने में खोखलेपन आनंद का एहसास करते हैं। लेकिन हम इस बात को ना भूलें कि बहुत से युवा हैं जो अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित करते और जो अपने में कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। हम धन्य कार्लोस अकुतिस के संबंध में इस बात को देख सकते हैं। कार्लोस अपने में संपूर्ण संचार माध्यमों, विज्ञापन और सामाजिक नेटवर्किंग के तंत्रों से वाकिफ होते हुए भी जो अपनी ओर हमें आकर्षित करते और हमें सुस्त बना देते हैं, जो हम पर हावी हो जाते, जिनके माध्यम हम भौतिकता के शिकार हो जाते और बाजार में उपलब्ध आधुनिक चीजों को खरीदने लगते हैं, अपने में स्वतंत्रता के समय को लेकर जुनूनी हो जाते और अपने में नकारात्मक बातों के शिकार हो जाते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद वह अपने में नए संचार माध्यमों और तकनीकों का उपयोग करते हुए सुसमाचार की सुंदरता और उनके निहित मूल्यों को प्रसारित करता था। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं के संबंध में विश्व प्रकाशित प्रेरितिक प्रबोधन क्रिस्तुस विविध पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में अत्याचार के कारण अन्यायपूर्ण दंड के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याद किया कि हम सेवा करने के लिए चुने गए हैं। संत पापा ने मिस्सा शुरू करते हुए कहा, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अत्याचार के कारण अन्यायपूर्ण दंड झेल रहे हैं। यीशु निर्दोष थे, फिर भी संहिता के पंडितों के द्वारा पीछा किए गए। नबी साइस के ग्रंथ से लिए गए पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि ईश्वर ने नबी का चुनाव उनके जन्म से पहले ही किया था। उसी तरह हम प्रत्येक जन सेवा के लिए अपनी माता के गर्भ से चुने गए हैं। हम में से कोई भी संयोग से इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है। हर एक जन का एक लक्ष्य है, एक स्वतंत्र लक्ष्य, और यह लक्ष्य ईश्वर का चुनाव है। मैं जन्म से ही चुना गया हूँ ताकि सेवा कार्य के साथ ईश्वर का सेवक बन सकूं। संत पापा ने कहा कि सेवा करना कोई बहाना नहीं है कि हम सेवा के बदले कोई दूसरी लाभ की वस्तु दें। यीशु ईश्वर के सेवक हमें सेवा का उदाहरण देते हैं। यीशु की महिमा थी मृत्यु तक सेवा देना। यह पराजय के समान लगी, किंतु सेवा का रास्ता था। जब ईश प्रजा सेवा के मनोभाव से अपने आप को दूर करती है, तब वह धर्म का परित्याग करती है। वह उनके जीवन को दूसरी चीजों के प्रति प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, जो मूर्ति पूजा के समान है, और इसके द्वारा हम अपनी बुलाहट खो देते हैं। संत पापा ने उपदेश में बतलाया कि ईश्वर के सामने हमारा मनोभाव महत्वपूर्ण है, जो हमें चुनते और अपना सेवक नियुक्त करते हैं। यीशु और माता मरियम के अतिरिक्त हम सभी पापी हैं। संत पेत्रुस का उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब पेत्रुस ने यीशु का स्वीकार किया और मुर्गे ने पांख दी, उसने आंसू बहाया और पश्चाताप किया। संत पापा ने कहा कि यही सेवक का रास्ता है, जो क्षमा की याचना करता जब वह फिसल कर गिर जाता है। दूसरा रास्ता उस सेवक का है जो यह समझने में असमर्थ होता है कि वह गिर गया है। यह रास्ता हृदय को अपनी पसंद के लिए खुला कर देता है, जो मूर्ति पूजा की ओर ले जाती है। इस तरह यूदस के समान हृदय शैतान के लिए खुला हो जाता है। संत पापा ने उपदेश के अंत में यीशु पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया, जो सेवा करने में वफादार थे। हमारी बुलाहट सेवा करने के लिए हुई है, ना कि कलीसिया में हमारे पद से फायदा उठाने के लिए। संत पापा ने प्रार्थना की कि जब हम फिसलते और पाप में गिर जाते हैं, तो संत पेत्रुस के समान पश्चाताप के आंसू बहा सकें। संत पापा फ्रांसिस ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद हेतु एक आपातकालीन कोष की स्थापना की है। परमधम पीठे मिशन सोसाइटी के सूचना विभाग एजेंसिया फिदेस द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में घोषित किया गया है कि संत पापा फ्रांसिस ने परमधम पीठे मिशन सोसाइटी में एक आपातकालीन कोष की स्थापना की है। इस कोष के द्वारा उन लोगों और समुदायों की मदद की जाएगी जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं। बयान में कहा गया है कि सहायता राशि मिशन देशों को कलीसिया की संरचनाओं और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाएगी। सुसमाचार प्रचार को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परमधम पीठे धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल तागले ने इस कोष के बारे कहा, सुसमाचार प्रचार के अपने कार्यों में कलीसिया बहुधा मानव कल्याण हेतु बड़े खतरों का सामना करने में पहली पंक्ति पर होती है। सिर्फ अफ्रीका में 74,000 धम बहने और 40,000 पुरोहित 7,274 अस्पताल एवं क्लिनिक चला रहे हैं। वे वृद्ध एवं विकलांग लोगों की मदद करने हेतु 2,340 केंद्रों की देखभाल करते हैं तथा 19 मिलियन से अधिक बच्चों को 45,088 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा देते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वे ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। संत पापा आगे की चुनौतियों का सामना करने हेतु पूरी कलीसिया के नेटवर्क का आह्वान कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने न केवल कोष की स्थापना की है, बल्कि योगदान देने वालों में वे प्रथम हैं। उनका पहला योगदान 7,50,000 US डॉलर है। वे कलीसिया की सभी संस्थाओं एवं व्यक्तियों का आह्वान करते हैं कि वे हर एक देश के परम धम पीठे मिशन सोसाइटी के माध्यम से इस फंड की सहायता करें। उधर तुरिन का महागिरजाघर टेलीविजन एवं सामाजिक संचार माध्यमों द्वारा पुण्य शनिवार को यीशु के पौत्र कफन की तस्वीर प्रस्तुत करेगा। पुण्य शनिवार 11 अप्रैल को तुरिन महागिरजाघर में पौत्र कफन वस्त्र की विशेष आराधना होगी, जिससे इताली टेलीविजन में लाइव एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा भी प्रसारित किया जाएगा। पुण्य शनिवार को संध्या 5 बजे और भारत के समय अनुसार 8:30 बजे तुरिन के महाधर्म अध्यक्ष गिरजाघर में एक प्रार्थना की धर्म विधि का अनुष्ठान करेंगे और उस दौरान चिंतन के समय पौत्र कफन की तस्वीर पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत की जाएगी। महाधर्म अध्यक्ष ने कहा कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस महामारी के समय में विश्वासियों को मदद दी जा सके तथा बुराई पर विजय पाने के लिए ख्रिस्त से कृपा की याचना की जा सके, जैसा कि उन्होंने क्रूस पर से किया। महाधर्म अध्यक्ष ने कहा, प्रेम अधिक शक्तिशाली है। यह पास्का घोषणा है जिसको पौत्र कफन हमारे लिए लाता है ताकि हम उससे पुनः महसूस कर सकें और यह हमारे हृदय को विश्वास एवं कृतज्ञता से भर दे। प्रेम जिसके द्वारा उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, जिसको हम पुण्य सप्ताह में याद करेंगे, यह हर प्रकार की पीड़ा, बीमारी, संक्रमण, चुनौती और निराशा से बढ़कर है। कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वे हमेशा निष्ठावान हैं और हमें एक अटूट एकता में बांधे रखते हैं। प्रार्थना के अंत में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।